नमस्कार भारत, तारीख 1 जून, दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। उत्तर कोरिया और रूस के बीच भी होगी शिखर वार्ता, अमरीकी विदेश मंत्री बोले सही ट्रैक पर है ट्रंप के मुलाकात की तैयारी।
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to boldly lead the United
States. अपनी मांगों को लेकर आज से आंदोलन पर कई राज्यों के किसान, 10 दिनों तक शहरों को आपूर्ति रोकने का ऐलान।
ये राष्ट्रव्यापी है, देश के 22 राज्य के 130 किसान संगठन इसमें शामिल है।
और खास रिपोर्ट, बोर्ड परीक्षा में कम नंबर आने पर छात्रों को क्यों नहीं है निराश होने की जरूरत।
आपकी कुछ भी कला के तरफ रुझान है तो फिर तो आपके मार्क्स कितने कम आए या ज्यादा आए कोई मायना ही नहीं।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से। अमरीका की विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका और उत्तर कोरिया की बातचीत सही दिशा में जा रही है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि 12 जून को सिंगापुर में किम जोंग उन के साथ होने वाली शिखर वार्ता के बारे में सकारात्मक चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अमरीका के बाद उत्तर कोरिया अब रूस के साथ भी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हो गया है। ये जानकारी उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने दी है। अमेरिका ने यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको से आयात किए जाने वाले एल्यूमिनियम और स्टील के उत्पादों पर मिलने वाली छूट को खत्म करने का फैसला लिया है। ये छूट 1 जून की आधी रात से खत्म होगी। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा है कि अब अमेरिका से आयातित स्टील के उत्पादों पर 26% और एल्यूमिनियम के उत्पादों पर 10% टैक्स लगेगा। ब्रिटेन, मेक्सिको और कनाडा ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध किया है और जवाबी कार्रवाई की बात कही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा,
The American administration has made a decision today that we deplore, and obviously is going to lead
हम अमरीकी प्रशासन के इस फैसले की निंदा करते हैं। हम निश्चित तौर पर इसका जवाब देने जा रहे हैं। हमें इसका खेद है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। हालांकि ये सब करने के बजाय हमें आपसी सहयोग करते हुए साथ आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि अमरीका और कनाडा के आर्थिक हित जिस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं उतने किसी अन्य दो देशों के नहीं। ये थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इटली में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच वहां के राष्ट्रपति ने अब ज्यूसेप्पे कोंटे को देश का अगला प्रधानमंत्री बनने को कहा है। कोंटे जनवादियों की पहली पसंद रहे हैं। वहीं देश के वित्त मंत्री का अहम पद पाओलो सावानो के बजाय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जियोवानी त्रिया को मिलेगा। इटली में प्रधानमंत्री पद के लिए मार्च में चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। डेनमार्क ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या नकाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है। नया कानून यहां 1 अगस्त से लागू होगा और नियम पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। डेनमार्क के न्याय मंत्री सोरेन पापे पोलसन ने कहा, हमें सहूलियत होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की आंखों में देख सकें और एक दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ सकें। डेनमार्क के मूल्य यही कहते हैं। ये थे डेनमार्क के न्याय मंत्री सोरेन पापे के शब्द। इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया भी बुर्के और नकाब पर इस तरह की आंशिक या पूरी पाबंदी लगा चुके हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल ने डेनमार्क के इस कानून को महिला अधिकारों का पक्षपातपूर्ण उल्लंघन बताया है। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय शुक्रवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव में हारते नजर आ रहे हैं। स्पेन की बास्क नेशनलिस्ट पार्टी ने उनका समर्थन न करने का ऐलान कर दिया है और इसके बाद मारियानो की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। मारियानो पर भ्रष्टाचार से गैरकानूनी धन हासिल करने का आरोप है और इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पेशकश की थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। साल 2018 का छठा महीना आज से शुरू हो गया है। जून का महीना कई लिहाज से अहम है। भारत समेत पूरी दुनिया में राजनीति और कूटनीति के पटल पर नए बदलावों का उत्सुकता के साथ इंतजार किया जा रहा है। भारत में कल 4 लोकसभा और 11 विधानसभाओं में हुए चुनाव के नतीजे घोषित हुए और उसके बाद से राजनीति की भावी तस्वीर गढ़ने की कोशिशें नए सिरे से शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करें तो उत्तर कोरिया भी दुनिया के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की तैयारी में है। अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी में जुटे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस के साथ शिखर वार्ता पर सहमति जाहिर की है। ये मुलाकात इसी साल होगी। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की इस महीने होने वाली मुलाकात की तैयारी सही दिशा में है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं सिंधु वासनी।
उत्तर कोरिया अमेरिका के बाद अब रूस के साथ भी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन करने के लिए तैयार हो गया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन रूस के साथ शिखर वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। ये अहम ऐलान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के उत्तर कोरिया दौरे के बाद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महीनों से चली आ रही अटकलों और कभी हाँ कभी ना के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्ते एक अहम पड़ाव पर हैं। पोम्पियो ने कहा कि दोनों देशों के बीच हो रही बातचीत सही दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा,
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to boldly lead the United States in the DPRK.
प्रस्तावित शिखर वार्ता राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उन के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत है और ये दोनों देशों को शांति, समृद्धि और सुरक्षा के नए दौर में ले जाएगी। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। पोम्पियो ने यह भी कहा कि अगर यहाँ आकर भी दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की कोशिशें बेकार चली जाती हैं तो ये एक त्रासदी जैसा होगा। उन्होंने कहा,
We think that working together, the people of the United States and North Korea can create a future defined by friendship.
हमें लगता है कि साथ साथ काम करके अमेरिका और उत्तर कोरिया एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो दोस्ती और सहयोग पर टिका होगा, न कि अविश्वास, डर और धमकियों पर। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच 12 जून को सिंगापुर में बातचीत प्रस्तावित है। इसके पहले अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और उत्तर कोरिया के सबसे वरिष्ठ मंत्री किम योंग चोल के बीच न्यूयॉर्क में बातचीत चल रही है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सिंगापुर में होने वाली बातचीत के सार्थक होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा,
Our Secretary of State has had very good meetings. He's meeting again today. I believe they'll be coming down to Washington.
हमारी विदेश मंत्रियों की मुलाकात बहुत अच्छी रही है। वो आज फिर मिल रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो शुक्रवार को मेरे लिए किम जोंग उनकी चिट्ठी लेकर वाशिंगटन आएंगे। अभी तक सब ठीक हो रहा है और मैं आगे भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक ही मुलाकात में हो जाएगा। हो सकता है कि हमें दूसरी और तीसरी मुलाकात भी करनी पड़े। ये भी हो सकता है कि इसके बाद हमारी कोई मुलाकात हो ही ना। 12 जून को ये पहली दफा होगा जब किम जोंग उन और ट्रंप मिलेंगे। पिछले हफ्ते ट्रंप ने सिंगापुर में होने वाली ये मुलाकात रद्द कर दी थी। उन्होंने कहा था कि बैठक रद्द करने का फैसला उन्होंने उत्तर कोरिया के बेहद भड़काऊ बयान के बाद लिया। हालांकि अगले दिन ही ट्रंप ने बातचीत को लेकर सकारात्मक बयान भी जारी किया था और इसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात की संभावना फिर बन गई थी। मुलाकात के एजेंडे को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हुकाबी सैंडर्स ने कहा है कि सिंगापुर में होने वाली ये बातचीत कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के इर्द गिर्द होगी। एक तरफ अमरीका से बातचीत और दूसरी तरफ रूस के साथ शिखर वार्ता पर सहमति देकर उत्तर कोरिया संकेत दे रहा है कि वो दुनिया के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने को तैयार है।
रिपोर्ट सुना रही थी सिंधु वासनी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अगली खबर भारत से। देश के कई राज्यों में आज से किसानों के संगठन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान किसान सड़कों पर नहीं उतरेंगे बल्कि 10 दिन तक छुट्टी पर रहेंगे। किसान संगठनों का दावा है कि इस दौरान गांवों से शहरों को होने वाली आपूर्ति ठप रहेगी। हमारे साथी नवीन नेगी ने राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष देव नारायण पटेल से बात की और उनसे पूछा कि किसानों की मांगे क्या हैं।
किसानों को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन चाहिए, लागत मूल्य चाहिए, और वो लागत मूल्य आज किसानों को प्राप्त नहीं हो रहा है। स्वामीनाथन आयोग ने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस समय उन्होंने जो लागत मूल्य निकाल करके दिया था उस पर 50% लाभ जोड़ करके देने का विषय आया था। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी हजारों सभाओं में कहा है कि हम किसानों को लागत पर 50% लाभ जोड़ करके हम उसका लागत मूल्य तय करेंगे, लेकिन आज तक ना तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की गई है, ना ही किसानों को लागत मूल्य का कोई गणित तैयार करके उनको दिया गया है। जो देश का अन्नदाता है, देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, वो आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है।
तो आपका जो ये आंदोलन है, ये बताइए कितना व्यापक होगा, ये कौन कौन इसमें शामिल होगा, कौन कौन से संगठन इसमें शामिल होंगे और कितना व्यापक, कितना बड़ा होने वाला है ये?
ये राष्ट्रव्यापी है, देश के 22 राज्य के 130 किसान संगठन इसमें शामिल है। राष्ट्रीय किसान महासंघ जो हमारा कोर ग्रुप है उसमें 130 किसान संगठनों ने इसमें ज्वाइन लिया है।
अपने आंदोलन का जो वक्त चुना है वो जून का महीना चुना है और बेहद गर्म महीना होता है इस वक्त पे, गांवों से जो चीजें आती हैं उनकी तो बड़ी जरूरत पड़ती है शहर वालों को।
जून का महीना चुनने का एक कारण ये होता है कि इसके पहले शादियों का सीजन होता है, किसान की कृषि उपज आती है, उसको मार्केटिंग करना रहता है। ये जून में हम लगभग खाली होते हैं, पूरा किसान फ्री होता है और फ्री समय में हम इस आंदोलन को अंजाम देते हैं।
एक महीना या डेढ़ महीने पहले की बात है, महाराष्ट्र में किसानों ने बड़ी लंबी पदयात्रा की थी, सुर्खियां बनी थी, किसानों का एक बड़ा व्यापक आंदोलन शुरू हुआ था। अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में भी अपना अनशन शुरू किया था, वहां पे किसानों की बातें की। लेकिन ये जो तमाम आंदोलन पिछले कई महीनों से चल रहे हैं, ये कुछ दिनों तक चलते हैं लेकिन फिर सरकार के लेवल पे बातें होती हैं और फिर वो आंदोलन वापस हो जाते हैं। जी,
अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया, हमने अन्ना हजारे के आंदोलन को इसलिए समर्थन किया कि अन्ना हजारे किसानों का विषय उठा रहे हैं, तो देश के कई किसान संगठनों ने उनके आंदोलन को समर्थन किया, अपने किसान कार्यकर्ताओं को लेकर के गए, लेकिन अन्ना हजारे ने किसानों के साथ विश्वासघात किया। जिस लागत मूल्य का डंका पीट करके वो रामलीला मैदान में बैठे, वो लागत मूल्य के विषय में कुछ तय नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन पर आपने आंदोलन को समाप्त कर दिया गया।
जैसे आपने कहा कि अन्ना हजारे ने भी मांगे उठाई थी और आश्वासन मिलने के बाद वो भी चुप हो गए, तो आप लोगों का जो ये आंदोलन है इसका अंतिम मुकाम क्या है?
इसमें अंतिम मुकाम ये है कि अभी जो विषय इनके स्तर के यानी राज्य सरकार के स्तर के हैं उनके आदेश जारी करें और टीवी पर घोषणा करें, और जो इनके स्तर के नहीं है वो केंद्र सरकार से है तो आंदोलन जारी रहेगा, केंद्र उस पर विचार करेगी।
ये थे किसान नेता देव नारायण पटेल और उनसे बात कर रहे थे नवीन नेगी। किसानों की बात हाल में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों में भी जोर शोर के साथ उठी। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर मिली जीत के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने इसे बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों के गुस्से का नतीजा बताया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और फूलपुर की हार के बाद कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा में मिली नाकामी को बीजेपी की घटती लोकप्रियता बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि उन्होंने बीजेपी को उसी के खेल में हराने का फॉर्मूला सीख लिया है, हालांकि बीजेपी इन दावों को गलत बता रही है। सुनिए दिनेश उप्रेती की रिपोर्ट।
कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के साथ वजने शुरू हुए ढोल नगाड़ों की गूंज देर तक जारी रही। नतीजों से उत्साहित विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश की जमीन पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का फॉर्मूला मिल गया है। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को साथ लेकर इस फॉर्मूले का पहला प्रयोग गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में वोटरों को साथ ला सकने वाले हर मुद्दे को उठाया था।
कोई किसानों की बात कर रहा होगा, कोई कह रहा है कि गन्ना या चिन्ना, मैं कह सकता हूँ कि गन्ना हमारा मुद्दा है, लेकिन चिन्ना की तस्वीर भी नहीं लगने देंगे हम लोग।
कैराना सीट पर जीत मिलने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि वो पहले से ही आगाह कर रहे थे कि यहाँ मुख्यमंत्री के उठाए मुद्दे नहीं चलेंगे।
जिन्ना तो हमने, जिन्ना का विषय तो उन्होंने छेड़ा, और जब उन्होंने छेड़ा तो हमने कहा कि भाई यहाँ जिन्ना नहीं चलेगा, यहाँ तो गन्ना चलेगा। आपकी जीविका पे जिन मुद्दों का सीधा असर है, उन विषयों को लेकर हम राजनीति करेंगे।
उधर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की रूपरेखा बनाने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का दावा है कि वो बीजेपी का खेल सीख गए हैं।
समाजवादी पार्टी ने तो उन्हीं का खेल सीखा है जो खेल वो हमारे लिए खेलते थे। जब विकास की बात हो रही थी तो वो सामाजिक बातें कहते थे। आप ही में से लोग कहते थे कि देखो बीजेपी की कितनी अच्छी सोशल इंजीनियरिंग है, कितनी समझ है उनको डेमोग्राफी की।
उत्तर प्रदेश में एक साथ दोहरा झटका खाने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव नतीजों को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि 2019 के आम चुनाव में नतीजों की सूरत अलग होगी।
2019 का जब चुनाव होगा, जब प्रधानमंत्री का चयन करना होगा, हिंदुस्तान की जनता जानती है प्रधानमंत्री का माने क्या होता है। पीएम का माने होता है पी फॉर परफॉर्मेंस और एम फॉर मेहनत। जब 2019 में चुनाव होंगे तो पीएम अर्थात परफॉर्मेंस और मेहनत के मापदंड पर मोदी जी ही इस देश के पीएम होंगे।
हालांकि राजनीति के विशेषज्ञ भारतीय जनता पार्टी के दावे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी को सुनिए।
जिस तरह से योगी जी ने वहाँ अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई, जिन्ना बनाम गन्ना और बहुत सारी बातें कहीं, खुद बीजेपी ने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी मोदी और योगी ने, तो इसलिए वो उपचुनाव की तरह नहीं है, उसको इसलिए मीडिया उसको इस रूप में देख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव नतीजों की जैसी भी समीक्षा करे, लेकिन इतना तय है कि उपचुनाव में एक के बाद एक मिली जीत ने विपक्ष को ये भरोसा दे दिया है कि वो एक साथ रहे तो उत्तर प्रदेश के अखाड़े में बाजी पलट भी सकती है। दिनेश उप्रेती, बीबीसी दिल्ली।
उत्तर प्रदेश के बाद बात ओडिशा की। ओडिशा के बालेश्वर जिले में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि वो उसे जुए में हार गए। उसके बाद महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ। पीड़िता के पिता का आरोप है कि पुलिस ने उन पर समझौते का दबाव बनाया। उधर पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। भुवनेश्वर से संदीप साहू की रिपोर्ट।
रोते बिलखते न्याय की फरियाद करते ये वो बदनसीब पिता हैं जिनकी बेटी को उसके पति ने जुए में हारने के बाद एक गैर मर्द के हवाले कर दिया। पति की उपस्थिति में ही उस आदमी ने पत्नी का बलात्कार किया। बालेश्वर जिले के मलांग बालीकुटी गांव की यह घटना 23 मई की है, लेकिन मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज किया और वो भी एसपी के हस्तक्षेप के बाद। उस शर्मनाक रात को याद करती हुई पीड़िता ने फोन पर बीबीसी से कहा, मेरे पति मुझे ले जाकर खेतों के बीचों बीच एक जगह पर खड़ा कर दिया, फिर उन्होंने मेरी साड़ी उतार दी। अभी दलई मेरे भाई जैसे हैं, उन्होंने आकर मुझे जकड़ लिया। मैंने उनसे मिन्नतें की, कहा कि आप मेरे भाई लगते हैं और मैं आपकी बहन, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि 27 मई को जब वे बालियापाल थाने में एफआईआर दर्ज करने पहुंचे तो मामला दर्ज करने के बजाय उन्हें सुलह कर लेने की सलाह दी गई। मजबूरन उन्हें बालेश्वर जाकर एसपी से मिलना पड़ा, तब कहीं जाकर मामला दर्ज हुआ और तहकीकात शुरू हुई। हालांकि बालियापाल के थाना प्रभारी क्षमा सागर पंडा ने इस आरोप का खंडन किया है। उन्होंने कहा है, दोनों पक्ष थाने में आए थे और समझौते के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन बाद में उन्होंने एसपी के पास याचिका दायर की तो हमने तत्काल मामला दर्ज कर लिया। पंडा ने बताया कि पीड़िता का पति और उसकी पत्नी का बलात्कार करने वाला उसका जुआ पार्टनर अविराम दोनों फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कल बालेश्वर में पीड़िता की डॉक्टरी मुआयना किया गया। भले देर से हो, लेकिन अब जब कि मामला दर्ज हो गया है तो पीड़िता और उनके पिता दोनों ये आश लगाए बैठे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा और उसके पति को उसके किए की सजा। संदीप साहू, बीबीसी भुवनेश्वर।
और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। अखबारों के साथ मौजूद है सिंधु वासनी। जी सिंधु।
जी, उत्तर प्रदेश के नूरपुर और कैराना में बीजेपी के हारने की खबर तकरीबन सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है। और बीजेपी दोनों ही सीटें हार गई थी, खासकर नूरपुर में तो काफ़ी बुरी हार मिली थी बीजेपी को। तो नवभारत टाइम्स ने हेडिंग लगाई है, बीजेपी के लिए उफ चुनाव। और अमर उजाला की हेडिंग है, कैराना में भाजपा पर भारी विपक्षी याराना,
यानी कैराना और याराना जोड़ने की कोशिश,
तुकबंदी बनाने की कोशिश की है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है कि गुजरात बोर्ड की 12वीं क्लास में संस्कृत की किताब में लिखा है कि सीता का अपहरण रावण ने नहीं बल्कि राम ने किया था। और जब गुजरात के बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अनुवाद की गलती की वजह से हो गया है,
इतनी बड़ी गलती कर दी है।
और इसे अनुवाद की गलती बताया गया। इसके अलावा खेल प्रेमियों को निराश करने वाली एक खबर है, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है तकरीबन। खबर यह है कि अभी संजीता चानू, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में गोल्ड मेडल भी जीता था वेटलिफ्टिंग में, उन पर डोपिंग का आरोप लगा है और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने उन्हें फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। और अगर डोपिंग का ये आरोप साबित हो गया तो उन्हें 4 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। और 4 साल के लिए सस्पेंड हुई तो वो 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले पाएंगे। और हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर एक दिलचस्प तस्वीर है। तस्वीर में नीले रंग की एक ट्रक को दिखाया गया है जो सामान लेकर आ रही है, और ये सामान है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा, तो मुलायम और अखिलेश दोनों ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है।
जी बहुत शुक्रिया सिंधु वासनी अखबारों की समीक्षा के लिए।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
और अब एक खास रिपोर्ट। 10वीं की परीक्षा के नतीजों के ऐलान के साथ ही टॉपरों को लेकर चर्चा शुरू हो गई, यानी उन छात्रों की बात शुरू हो गई जिन्हें ज्यादा नंबर मिले थे। इस बीच परीक्षा परिणाम की एक अलग तस्वीर भी सामने आई। खबर आई कि कम नंबर आने से परेशान दिल्ली के 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में सवाल उठा कि क्या कम नंबर पाने वाले छात्रों के लिए भविष्य की राह मुश्किल हो जाती है। भूमिका राय ने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है।
दिल्ली के वसंत कुंज के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बीते मंगलवार को खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक छात्रा को 10वीं में 70% मार्क्स आए थे। परिवार का कहना है कि छात्रा को 11वीं में साइंस लेना था, लेकिन उसे लगा कि 70% अंक के साथ उसे 11वीं में साइंस नहीं मिलेगी। वैसे तो दिल्ली के कई स्कूलों के लिए ये बात सच है, लेकिन क्या एक परीक्षा में कम नंबर आने पर इतना बड़ा कदम उठाना सही है? करियर कॉलमिस्ट और काउंसलर परवीन मल्होत्रा के मुताबिक परीक्षा देना एक कला है।
एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हमेशा आगे भी आपके मार्क्स गंदे आएंगे। तो आपको एक एग्जाम के बेसिस पर ये तय भी नहीं कर लेना चाहिए अपने लिए कि मैं तो पढ़ाई में एकदम गोल हूँ। लेकिन द आर्ट ऑफ स्टडिंग एंड द आर्ट ऑफ गिविंग एग्जाम्स इज नॉट टॉट। तो कुछ बच्चों को नेचुरली आ जाता है, कुछ बच्चों को नहीं आता।
देश के अलग अलग बोर्ड में 10वीं के मार्क्स पर 11वीं में एडमिशन निर्धारित होते हैं और 12वीं के नतीजों पर कॉलेज के दाखिले, इसलिए छात्र नंबर को लेकर अक्सर दबाव में होते हैं। काउंसलर परवीन मल्होत्रा की माने तो दुनिया में 3000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं जो कम नंबर आने पर भी आप चुन सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जो मार्क्स से जिनका कोई तालमेल नहीं होता। सपोज आपको डिजाइनिंग में जाना है और डिजाइनिंग में 40 से ऊपर विकल्प हैं, फ्रॉम इंटीरियर डिजाइन टू इंटीरियर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर टू लेदर वेयर डिजाइन टू स्लीप वेयर डिजाइन टू स्पोर्ट्स वेयर डिजाइन टू एक्सेसरी डिजाइन टू ज्वेलरी डिजाइन टू व्हाटएवर। तो अगर आपकी कुछ भी कला की तरफ रुझान है तो फिर तो आपके मार्क्स कितने कम आए या ज्यादा आए कोई मायना ही नहीं रहता।
छात्रों की माने तो बहुत हद तक स्कूल पढ़ाई और एग्जाम का दबाव कम करने के लिए काम करता है। कई बच्चे उसमें सहज हो जाते हैं तो कई फिर भी दबाव में रहते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल से 12वीं के टॉपर प्रिंस के मुताबिक बोर्ड परीक्षा में वो बिल्कुल भी दबाव में नहीं थे।
हमारे स्कूल में जो एग्जाम लिए थे वो इसीलिए लिए आते थे ताकि बच्चे जो हैं प्रेशर से फ्री हो जाएं। हमको मतलब हमारे जब बोर्ड के पेपर थे हम तो ऐसे थे, अच्छा बोर्ड के पेपर हैं ठीक है, बिल्कुल इतना प्रेशर ही नहीं था क्योंकि हमारे 10-10, 11-11 एग्जाम ले लिए गए थे तो हमें लिखने की प्रैक्टिस हो गई थी, आंसर्स याद थे सारे, तो हमें इतना प्रेशर था ही नहीं कि बोर्ड का। टीचर्स ने भी कभी नहीं बोला कि ज्यादा पढ़ो, तुम्हारे बोर्ड है, तुम्हें नंबर लेके आने। जो बोर्ड का एक फोबिया था वो हमारे स्कूल में नहीं है, वो मतलब नॉर्मल स्कूलों से इसीलिए अलग है कि हमारे स्कूल में ना बोर्ड का फोबिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आपको ज्यादा नंबर लेके आने, प्रैक्टिस में हो जाता है सब कुछ।
अगर 10वीं और 12वीं के बोर्ड में बच्चों के कम मार्क्स आए हैं तो माँ पिता को भी बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। काउंसलर परवीन मल्होत्रा कहती हैं कि ऐसे मौकों पर माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
पेरेंट्स को और बच्चे को एक एग्जाम के बेसिस पर कोई सीरियस कंक्लूजन्स पर नहीं आना चाहिए। पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, सबसे पहले इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही ब्रिटल होती है और हमारे जो इंडियन बच्चे हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि हम हमारे माँ बाप को कैसे खुश करें, और माँ बाप के जब एक्सपेक्टेशन आसमान तक पहुँचे हुए होते हैं तो बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल और कठिन समय होता है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा जरूरी नहीं है कि हो, और एग्रीगेट मार्क्स काउंट होते हैं। तो सपोज आप बहुत अच्छे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में लेकिन आपकी इंग्लिश वीक है तो इससे आपकी पूरी टोटल नीचे चली जाएगी, है ना। तो आपको अपने बच्चे के एग्रीगेट मार्क्स देखकर कभी ये नतीजे पे नहीं आना चाहिए कि बच्चा पढ़ने लायक है या नहीं है, औरों के साथ तुलना करना इससे ज्यादा खतरनाक, बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और कोई बात नहीं हो सकती है।
अब तो काउंसलर ने भी कह दिया है कि एक परीक्षा से करियर नहीं बनता और न बिगड़ता है, तो फिर चिंता किस बात की, पूरे उत्साह से आगे की परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए।
और अब जान लेते हैं खेल की दुनिया का हाल।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। नीदरलैंड्स में अगले महीने से आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हॉकी इंडिया ने कल 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। इस टूर्नामेंट में दिग्गज गोलकीपर पिया श्रीजेश भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। पंजाब के जर्मन प्रीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण करने जा रहे हैं। श्रीजेश की कप्तानी में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में इतिहास रचते हुए रजत पदक हासिल किया था। पिछले 34 वर्षों में भारतीय टीम ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में कोई पदक जीता था। टूर्नामेंट की शुरुआत 23 जून से होगी। श्रीजेश के साथ इस टूर्नामेंट में चिंगलन सेना सिंह उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 23 जून को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। भारत के लिहाज से ये टूर्नामेंट क्यों खास है, इस पर बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय ओलंपियन हरबिंदर सिंह।
इंडिया के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसके डेढ़ महीने बाद एशियन गेम्स हैं और एशियन गेम्स की प्रेपरेशन के लिए मेरे ख्याल इससे ज्यादा अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल सकता। ये 6 देशों का टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन लीग के बेस पे मैचेस होंगे और हर एक मैच काफी इम्पोर्टेंस रखता है, और ये जो चैंपियन ट्रॉफी का लास्ट संस्करण है इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी आगे से खत्म हो जाएगी। तो जो टीम सिलेक्ट की गई है ये हर एक लड़के के लिए एक काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम की जो सिलेक्शन है इस टीम की परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगी।
और अब बात फुटबॉल की। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को पिछले सप्ताह लगातार तीसरी बार चैंपियंस लीग का खिताब दिलाने वाले जिनेडिन जिदान ने कल अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। 45 वर्षीय जिदान फ्रांस की राष्ट्रीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। पिछले शनिवार खेले गए मैच में रियल ने लिवरपूल को 3-1 से हराकर लगातार तीसरी बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता था। ऐसे में जिदान पहले ऐसे कोच बने जिनके मार्गदर्शन में क्लब ने लगातार तीसरी बार लीग का खिताब जीता। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार सिंधु वासिनी से।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमरीका और उत्तर कोरिया की बातचीत सही दिशा में जा रही है। अमरीका ने यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको से आयात किए जाने वाले एल्यूमिनियम और स्टील के उत्पादों पर मिलने वाली छूट को खत्म करने का फैसला किया है। इटली में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच वहां के राष्ट्रपति ने अब जुजेपे कोंटे को देश का अगला प्रधानमंत्री बनने को कहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान, फेसबुक प्रसारण में मदद की दिनेश उप्रेती ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbc.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।